कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, आज हम अपने बाइबल अध्ययन में पहला राजा नामक पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे। इस पुस्तक में राजा दाऊद के जीवन के अंतिम दिन और सुलेमान का राज्य करना दर्शाया गया है। इससे पहले कि हम अध्ययन आरंभ करें, आइए सुन लेते हैं एक मधुर गीत।
मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले। बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई, सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई, अच्छा नहीं है देख संभल जा यीशु से है जुदाई, यीशु को अपना, यीशु को अपना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए आप तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत करता हूँ और विशेष करके हमारे उन नए श्रोता मित्रों का जो पहली बार आज हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले अध्ययन में हम सामुएल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे थे और आज हम पहले राजा की पुस्तक से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे और इसमें हम देखेंगे पहले राजा की पुस्तक में इसकी प्रस्तावना को। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके पूर्व कि हम आगे बढ़ें, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर पिता से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके माध्यम से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, हमें सिखाते और सुधारते हैं। पिताजी, हमारी प्रार्थना है आज के इस अध्ययन पर आप अपने आशीष दीजिए। हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो अपने घरों में बैठकर आपके वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आप उनके जीवन में कार्य कीजिए, उनसे बोलिए और बातचीत कीजिए। हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, निराश हैं, दुखी और चिंतित हैं, बेरोजगार हैं, अपने जीवन साथी की तलाश में हैं, पारिवारिक समस्या में उलझे हुए हैं, आर्थिक समस्या में उलझे हुए हैं, पिताजी आप उनकी सहायता करें। आज अपने वचन के द्वारा उनसे बोले और बातचीत करें ताकि वे इस बात को जान सकें कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनकी जरूरतों को समझते हैं। हाँ प्रभु, आप उनकी सहायता करेंगे, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस अध्ययन को आपके हाथ में सौंप देते हैं, आप हम सब की सहायता करें। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम पहले राजा की पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं और सर्वप्रथम हम देखेंगे प्रस्तावना। पहला राजा और दूसरा राजा दोहरी पुस्तक श्रृंखला में दूसरा स्थान रखती है। पहला व दूसरा शामुएल, पहला व दूसरा राजा, पहला व दूसरा इतिहास। आरंभ में तो ये पुस्तकें एक एक ग्रंथ ही थी। शामुएल, राजाओं और इतिहास। इन पुस्तकों का विभाजन यूनानी अनुवादकों ने सेप्टोजेंट में किया था कि पाठकों को पढ़ने में सुविधा हो। मेरे विचार में यह एक अत्यधिक बुद्धिमानी का निर्णय है। यद्यपि इसका लेखक अज्ञात है, पहला राजाओं और दूसरा राजाओं के लेखन कार्य का समय मंदिर में रहते हुए ही था, जिसे हम पहला राजाओं की पुस्तक 8 अध्याय उसके 8 पद में पाते हैं। प्रथाओं के अनुसार इनका लेखक यिर्मयाह था, परंतु आधुनिक विचारों का मत है कि इस पुस्तक के लेखक भविष्यवक्ता रहे हैं। मेरे मित्रों, इन दोनों पुस्तकों का विषय पहला राजाओं में 9 बार आने वाली अभिव्यक्ति है, उसके पिता दाऊद। दूसरे शब्दों में हम दाऊद की वंशावली देख रहे हैं और प्रत्येक राजा दाऊद द्वारा स्थापित मापदंड से नापा जा रहा है। साफ बात तो यह है कि यह मानवीय मानदंड है, यह संसार का सबसे महान मानदंड नहीं है, परंतु हम देखते हैं कि राजा इससे भी चूक गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कुछ तो राजा ऐसे रहे जो इस पर खरे उतरे। तथापि हम देखेंगे कि धर्मशास्त्र का यह भाग दुख का है, नीचता का है, यह इतिहास है और राज्य के पतन का वर्णन करता है। पहले तो राज्य का विभाजन हुआ और फिर प्रत्येक राज्य का पतन भी हुआ। मेरे मित्रों, इसमें मुख्य पद है जो इन दोनों पुस्तकों के बल का सारांश प्रस्तुत करते हैं। आरंभिक मुख्य पद उत्तरी राज्य के पतन का वर्णन करते हैं, जिसे हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय उसके 22 और 23 पद में पढ़ते हैं। अतः जैसे पाप यरोबाम ने किए थे, वैसे ही पाप इसराइली भी करते रहे और उनसे अलग न हुए। अंत में यहोवा ने इसराइल को अपने सामने से दूर कर दिया, जैसा कि उसने सब दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था। इस प्रकार इसराइल अपने देश से निकलकर अश्शूर को पहुंच गया, जहां वह आज के दिन तक रहता है। मेरे मित्रों, दूसरा मुख्य पद दूसरे राजाओं की पुस्तक 25 अध्याय उसके 21 पद में है, जो दक्षिणी राज्य के पतन का उल्लेख करता है। लिखा है, तब बेबीलोन के राजा ने हमाद देश के रिबला में ऐसा मारा कि वे मर गए। यों यहूदी अपने देश से बंदी बनके अपने देश से निकाल दिए गए। मित्रों, पहले राजाओं में हमारे पास राज्य के विभाजन का वृतांत है और दूसरे राजाओं में राज्य के पतन का वृतांत है। दोनों पुस्तकों को एक मानकर चलें तो उनका आरंभ राजा दाऊद से होता है और अंत बेबीलोन के राजा पर आकर होता है। ये पुस्तकें परमेश्वर के राज्य पर मनुष्य के शासन का वृतांत है, जिसके परिणाम अच्छे नहीं हैं। यदि परमेश्वर के जनों के लिए आशीषें और लाभ आने हैं, तो पृथ्वी के सिंहासन को स्वर्ग के सिंहासन के साथ एक रूप होना है। मित्रों, हम देखेंगे कि मनुष्य की योजना परमेश्वर के उद्देश्य को व्यर्थ नहीं कर सकती। पहला और दूसरे राजाओं का पुस्तक वास्तव में पहला और दूसरा शामुएल की कहानी का अग्रिम भाग है। ये चारों पुस्तकें एक इकाई मानी जा सकती है, क्योंकि वे राष्ट्र के इतिहास को दाऊद और सुलेमान के युग के विकास, प्रभाव, समृद्धि, विभाजन, बंधुआई और निर्वासन तक वर्णन करती हैं। इन पुस्तकों की नैतिक शिक्षा है कि मनुष्य पर और संसार पर राज्य करने की मनुष्य की अयोग्यता को प्रकट करे। इन चारों ऐतिहासिक पुस्तकों में हम इसराइल के उत्थान और पतन का अति सजीव चित्रण को देखते हैं। तो आइए आज हम पहले राजाओं की पुस्तक उसके पहले अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करें। इसका विषय है अदुनियाह का असफल राजद्रोह, सुलेमान का राज्याभिषेक। मित्रों, राजाओं की पुस्तकें शामुएल की पुस्तक की कहानी का अगला भाग है। इस अध्याय में दाऊद एक दुर्बल वृद्ध है। उसके पुत्रों में से एक अदुनियाह सिंहासन पाने का प्रयास करता है और भविष्यद्वक्ता नातान और बतशेबा द्वारा प्रेरणा पाकर दाऊद इसराइल राजा होने के लिए अपने अन्य पुत्र सुलेमान का अभिषेक करता है। पहले राजाओं का यह आरंभिक अध्याय एक अनुपम वृतांत है, दाऊद की बढ़ती हुई दुर्बलता और अदुनियाह का षड्यंत्र, जो एक दुखद आरंभ है। आइए हम पढ़ें पहले राजाओं की पुस्तक 1 अध्याय उसका 1 पद। लिखा हुआ है, दाऊद राजा बूढ़ा वरन बहुत पुरनिया हुआ और यद्यपि उसको कपड़े उड़ाए जाते थे तो भी वह गर्म न होता था। मेरे मित्रों, दाऊद अब वृद्ध हो गया है। उसे वयोवृद्ध मानना कठिन है। हम दाऊद को सदा ही एक युवा चरवाहा के रूप में समझते हैं। उसे दुर्बल वृद्ध पुरुष जिसे सेवा की आवश्यकता है स्वीकार करना हमारे लिए कई बार कठिन सा महसूस होता है। उसका पुत्र अदोनियाह उसकी इस दशा का लाभ उठाता है। वह अपने आप को सिंहासन पर बैठाने और राजा बनने का प्रयास करता है, परंतु यह निश्चय ही परमेश्वर की योजना में नहीं था। बड़ा षड्यंत्र और साठ गांठ की जाती है। दाऊद के राज्य का भी यही गुण था। पहले तो हम देखें कि अदोनियाह कौन था। पहले राजाओं में पहली बार सुर्खियों में उसका नाम आता है। अदोनियाह जानता था कि नातान बतशेबा की ओर रहेगा। नातान ने दाऊद को उसके भयानक पाप के समय संभाला था। बतशेबा सुलेमान की माता थी और अब नातान उसके पास जाता है। नातान और बतशेबा की योजना को हम देखते हैं। पहले राजाओं की पुस्तक एक अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, तब नातान ने सुलेमान की माता बतशेबा से कहा, क्या तूने सुना है कि हग्गीत का पुत्र अदोनियाह राजा बन बैठा है और हमारा प्रभु दाऊद इसे नहीं जानता। ध्यान दीजिए कि अदोनियाह दाऊद की पीठ के पीछे काम करता है। वह राजा का परामर्श खोजना उचित नहीं समझता। अब नातान अपना काम करता है। हम पहले राजाओं की पुस्तक एक अध्याय उसके 13 पद में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, तू दाऊद राजा के पास जाकर उससे यूं पूछ कि हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या तूने शपथ खाकर अपनी दासी से नहीं कहा कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे पीछे राजा होगा और वह मेरी राजगद्दी पर विराजेगा? फिर अदोनियाह क्यों राजा बन बैठा है? दाऊद ने बतशेबा से प्रतिज्ञा की थी। उसका पहला पुत्र तो मर गया था, परंतु दूसरे पुत्र के जन्म पर उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह उसे राजा बनाएगा। इसी पुत्र का नाम सुलेमान था। परंतु अब दाऊद उसे राजा बनाने के लिए कदम नहीं उठा रहा है। मेरे विचार में दाऊद सुलेमान को राजा बनाने में अधिक रुचि नहीं रखता था। हम आगे पढ़ते हैं पहले राजाओं की पुस्तक एक अध्याय उसके 14 पद में। लिखा है, और जब तू वहां राजा से ऐसी बातें करती रहेगी तब मैं तेरे पीछे आकर तेरी बातों को पुष्ट करूंगा। नातान ने कहा, हम दाऊद को स्थिति से अवगत करा दें, तू जाकर बात कर और मैं आकर तेरी बातों की पुष्टि करूंगा। नातान चाहता था कि यह बूढ़ा राजा सतर्क हो कि उसकी नाक के नीचे क्या चल रहा है। तब हम पहले राजाओं की पुस्तक एक अध्याय उसके 15 और 16 पद में पढ़ते हैं, तब बतशेबा राजा के पास कोठरी में गई। राजा तो बहुत बूढ़ा था और उसकी सेवा टहल शुनेमिन अभिषेक करती थी, और बतशेबा ने झुककर राजा को दंडवत की और राजा ने पूछा, तू क्या चाहती है? मित्रों, ऐसा प्रतीत होता है कि दाऊद ने बहुत समय से बतशेबा को नहीं देखा था। आगे लिखा है पहले राजाओं की पुस्तक एक अध्याय उसके 17 से 20 पद में। उसने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, तूने तो अपने परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर अपनी दासी से कहा था कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे पीछे राजा होगा और वह मेरी गद्दी पर विराजेगा। अब देख, अदोनियाह राजा बन बैठा है और अब तक मेरा प्रभु राजा इसे नहीं जानता। और उसने बहुत से बैल तैयार किए, पशु और भेड़ बलि की, और सब राजकुमारों की और एब्यातार याजक और योआब सेनापति को बुलाया है, परंतु तेरे दास सुलेमान को नहीं बुलाया। और हे मेरे प्रभु, हे राजा, सब इसराइली तुझे ताक रहे हैं कि तू उनसे कहे कि हमारे प्रभु राजा की गद्दी पर उसके पीछे कौन बैठेगा। मेरे मित्रों, दाऊद ने अपने पुत्रों में से किसी को भी राजा बनाने पर अभी तक विचार नहीं किया था। अदोनियाह रूपवान, आकर्षक और योग्य पुरुष था, और अनेक जन उसे अपना राजा भी बनाना चाहते थे। तब हम आगे देखते हैं पहले राजाओं की पुस्तक एक अध्याय के 21 से 24 पद में। लिखा हुआ है, नहीं तो जब हमारा प्रभु राजा अपने पुरखाओं के संग सोएगा तब मैं और मेरा पुत्र सुलेमान दोनों अपराधी गिने जाएंगे। यो बतशेबा राजा से बातें कर ही रही थी कि नातान नबी भी आ गया, और राजा से कहा गया कि नातान नबी हाजिर है। तब वह राजा के सम्मुख आया और मुंह के बल गिरकर राजा को दंडवत की। और नातान कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या तूने कहा है कि अदोनियाह मेरे पीछे राजा होगा और वह मेरी गद्दी पर विराजेगा? मित्रों, नातान और बतशेबा जानना चाहते थे कि दाऊद ने क्या अदोनियाह को उसके बाद राजा बनने के लिए चुना था। दाऊद को तो वास्तव में इस बात का ज्ञान भी नहीं था कि अदोनियाह क्या कर रहा है। हम पहले राजाओं की पुस्तक के एक अध्याय उसके 28 से 30 पद में पढ़ते हैं। दाऊद राजा ने कहा, बतशेबा को मेरे पास बुला लाओ। तब वह राजा के पास आकर उसके सामने खड़ी हुई। राजा ने शपथ खाकर कहा, यहोवा जो मेरा प्राण सब जोखिमों से बचाता आया है, उसके जीवन की शपथ, जैसा मैंने तुझसे इसराइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर कहा था कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे पीछे राजा होगा और वह मेरे बदले मेरी गद्दी पर विराजेगा, वैसा ही मैं निश्चय आज के दिन करूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ ध्यान दीजिए कि वह सुलेमान के विषय बतशेबा से कहता है, तेरा पुत्र, यानी हमारा पुत्र नहीं। दाऊद इस युवक में अधिक रुचि नहीं रखता था, क्योंकि मेरे विचार में उन दोनों में अधिक समानताएं नहीं थी, जैसा हम अति शीघ्र इसके विषय में देखेंगे। पहले राजा एक अध्याय उसके 31 से 33 पद में आगे लिखा हुआ है, तब बतशेबा ने भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत करके कहा, मेरा प्रभु राजा दाऊद सदा तक जीवित रहे। तब दाऊद राजा ने कहा, मेरे पास सादोक याजक, नातान नबी, अहोयादा के पुत्र बनायाह को बुला लाओ। सो वे राजा के सामने आए। राजा ने उनसे कहा, अपने प्रभु के कर्मचारियों को साथ लेकर मेरे पुत्र सुलेमान को मेरे निज खच्चर पर चढ़ाओ और गिहोन को ले जाओ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, खच्चर राजाओं की सवारी होता था, जबकि घोड़ा युद्ध में सवारी का काम आता था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में चार घोड़ों के सवार अव्यवस्था और युद्ध के प्रतीक हैं। प्रभु यीशु मसीह जब फिर से आएगा, तब वह सफेद घोड़े पर सवार होगा, जो युद्ध का प्रतीक है। वह इस पृथ्वी पर विद्रोह का दमन करेगा और उसके समक्ष हर एक घुटना टेकेगा, हर एक घुटना झुकेगा। प्रभु यीशु मसीह जब पहली बार पृथ्वी पर आया था, तब वह युद्ध करने नहीं आया था, वह इसराइल का मसीहा होने के लिए आया था। और यही कारण था कि जब वह फसह के समय यरूशलेम में आया, तो गधी के बच्चे पर सवार था। यह राजाओं की शांति सवारी थी, और इसी प्रकार अब दाऊद का अपना खच्चर तैयार किया जाना था और सुलेमान को उस पर सवार होना था। मित्रों, हम आगे देखते हैं सुलेमान का राज्याभिषेक। पहला राजाओं की पुस्तक एक अध्याय उसके 38 और 39 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तब सादोक याजक और नातान नबी और यहोयादा का पुत्र बनायाह करेतियों और पलेतियों को संग लिए हुए नीचे गए और सुलेमान को राजा दाऊद के खच्चर पर चढ़ाकर गिहोन को ले चले। तब सादोक याजक ने यहोवा के तंबू में से तेल भरा हुआ सिंह निकाला और सुलेमान का राज्याभिषेक किया और वे नरसिंगा फूंकने लगे और सब लोग बोल उठे, राजा सुलेमान जीवित रहे। मेरे मित्रों, अब तो कोई शक ही नहीं रह जाता है कि दाऊद का उत्तराधिकारी कौन होगा। स्पष्ट है कि सुलेमान को दाऊद के बाद राजा होना है। तब हम आगे पढ़ते हैं पहले राजाओं की पुस्तक एक अध्याय उसके 40 और 41 पद में, तब सब लोग उसके पीछे पीछे बांसुरी बजाते और इतना बड़ा आनंद करते हुए ऊपर गए कि उनकी ध्वनि से पृथ्वी डोल उठी। जब अदुनिया और उसके सब नेवताहारी खा चुके थे, तब यह ध्वनि उनको सुनाई पड़ी। और युवाब ने नरसिंगे का शब्द सुनकर पूछा, नगर में हलचल और चिल्लाहट का शब्द क्यों हो रहा है? अब ध्यान दे, अदुनिया का संदेशवाहक कहता है पहले राजाओं की पुस्तक एक अध्याय 47 और 48 पद में, फिर राजा के कर्मचारी हमारे प्रभु दाऊद राजा को यह कहकर धन्य कहने आए कि तेरा परमेश्वर सुलेमान का नाम तेरे नाम से भी महान करे और उसका राज्य तेरे राज्य से भी अधिक बढ़ाए। और राजा ने अपने पलंग पर दंडवत की। फिर राजा ने यह भी कहा कि इसराइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज मेरे देखते एक को मेरी गद्दी पर विराजमान किया है। मित्रों, दाऊद ने एक प्रकार से मुहर लगा दी है कि सुलेमान ही राजा होगा। दाऊद तो अब वृद्ध हो चुका था और अब जे हुई वह अपने पुरखाओं के साथ सो जाएगा, त्यों ही उसका बेटा राजा बन बैठेगा। हम पहले राजाओं की पुस्तक एक अध्याय उसके 49 और 50 पद में आगे पढ़ते हैं, तब जितने नेवताहारी अदुनिया के संग थे, वे सब थरथरा गए और उठकर अपना अपना मार्ग लिया। और अदुनिया सुलेमान से डर कर उठा और जाकर वेदी के सिंगों को पकड़ लिया। मेरे प्रियो, अदुनिया के साथी भय के कारण वहां से निकल भागते हैं। वे जान गए थे कि उन्होंने देशद्रोही का काम किया है। अदुनिया मृत्यु के भय से भागा और बेदी के सिंगों को पकड़ लिया। वह सोचा कि इसके द्वारा से वह बच जाएगा। पहले राजाओं की पुस्तक 1 अध्याय उसके 51 और 52 पद में आगे पढ़ते हैं। तब सुलेमान को यह समाचार मिला कि अदोनिय्याह सुलेमान राजा से ऐसा डर गया है कि उसने वेदी के सिंगों को यह कहकर पकड़ लिया है कि आज राजा सुलेमान शपथ खाए कि अपने दास को तलवार से ना मार डालेगा। सुलेमान ने कहा, यदि वह भलमनसी दिखाए तो उसका एक बाल भी भूमि पर गिरने ना पाएगा, परंतु यदि उसमें दुष्टता पाई जाए तो वह मारा जाएगा। सुलेमान न्याय में सिद्ध है। यदि अदोनिय्याह एक निष्ठावान नागरिक प्रकट हो तो उसको नहीं मारा जाएगा, उसके साथ कुछ भी नहीं होगा, और यदि निष्ठावान नहीं रहा तो उसे मार दिया जाएगा। हम पहले राजाओं की पुस्तक 1 अध्याय के 53 पद में पढ़ते हैं। तब राजा सुलेमान ने लोगों को भेज दिया जो उसको वेदी के पास से उतार ले आए। तब उसने आकर राजा सुलेमान को दंडवत की और सुलेमान ने उससे कहा, अपने घर चला जा। मेरे मित्रों, अदोनिय्याह को राजा की उपस्थिति में लाया गया और उसने सुलेमान को दंडवत की और सुलेमान ने उसे शांति से विदा किया। और यहाँ पर अध्याय 1 समाप्त होता है। और अब हम आगे देखेंगे 2 में। इसमें हम देखते हैं कि मरण शय्या से दाऊद के आदेश और सुलेमान का राजा बनना। इस अध्याय में सुलेमान के लिए दिए गए दाऊद के अंतिम निर्देश हैं और सुलेमान द्वारा दाऊद की अंतिम इच्छाओं की बुद्धिमानी से पूर्ति करना है। तो हम देखेंगे सुलेमान को दाऊद के कार्यभार दिए जाते हैं। पहले राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा कि मैं लोक की रीति पर कूच करने वाला हूँ, इसलिए तू ह्या बांधकर पुरुषार्थ दिखा। सुलेमान को दाऊद के आरंभिक वचन ये थे, मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूँ। मनुष्य की रीति यही है। रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय उसके 12 पद में पौलुस कहता है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। आदम के द्वारा मृत्यु आई और सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया है। आदम का पाप आप में और मुझ में भी आ सकता है और आ गया है। प्रभु जब तक ना आ जाए तब तक हम मृत्यु के द्वार से निकास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का मार्ग यही है और इस जीवन यात्रा का अंतिम चरण भी यही है। यह एक अति आकर्षक विषय तो नहीं है, परंतु आज हम मृत्यु के विषय सोचना नहीं चाहते हैं क्योंकि यह मानव जाति के लिए एक निराशा का कारण है। मेरे मित्रों, हम भजन संहिता 23 उसके 4 पद में दाऊद के द्वारा कहे गए बातों को देखते हैं। लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। जी हाँ, यहाँ दाऊद मरण शय्या की सच्चाई के विषय नहीं कह रहा है। किसी ने कहा है कि जो पल आपको जीवन देता है उसी पल से आपका जीवन लिया जाना आरंभ हो जाता है। दाऊद जीवन की तुलना अंधकार से भरी घाटी से करता है। जन्म लेते ही आपकी इस घाटी में यात्रा आरंभ हो जाती है और आप जितना आगे जाते हैं उतना ही अधिक यह घाटी सक्रिय होती जाती है। इस घाटी के अंत में मृत्यु है। आज हम सब इस घाटी में होकर के चल रहे हैं। संभवतः आज आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, परंतु सूर्यास्त से पूर्व आपकी मृत्यु हो सकती है। मेरे मित्रों, दाऊद सुलेमान से कहता है कि तू ह्या बांधकर पुरुषार्थ दिखा। यहूना बपतिस्मा देने वाले के पास आने वालों से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 8 पद में, फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। यहूना बपतिस्मा देने वाला जंगल में बड़ा हुआ था, अतः वह एक कठोर मनुष्य था। हमारा प्रभु भी कठोर मनुष्य था। मुझे प्रभु यीशु के चित्र अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि उसमें वह पौरुषहीन और दुर्बल लगता है, जबकि कुछ आधुनिक चित्रों में तो प्रभु यीशु को अधिक पुरुषोचित दर्शाया गया है। क्या मैं आपको यह बता सकता हूं कि जब वह इस पृथ्वी पर घूमता फिरता था तब आप एक कठोर मनुष्य को देख पाते? उसके हाथों में गांठें पड़ी हुई थी क्योंकि वह बढ़ई का काम करता था। निस्संदेह वह परमेश्वर था, परंतु वह एक पूर्ण पुरुष भी था। वह परिपूर्ण मनुष्य और परिपूर्ण परमेश्वर था। सुलेमान अपने पिता के समान नहीं था। दाऊद एक पुरुष था, परंतु सुलेमान में पिता सदृश पौरुष नहीं था। दाऊद तो परिस्थितियों के अनुरूप कठोर हो गया था, परंतु सुलेमान राज्य महल में वरन जनाना खाने में पला और बढ़ा था। क्या कारण था कि सुलेमान के पास 1000 स्त्रियां थी? मेरे मित्रों, इसका उत्तर स्पष्ट है कि सुलेमान यदि कुछ जानता था तो केवल स्त्रियों के ही बारे में जानता था। यदि कोई नारी सदृश पुरुष हुआ तो वह सुलेमान ही था। मैं नहीं सोचता कि उसमें और दाऊद में कभी कोई समानता थी। अतः दाऊद उससे कहता है कि मैंने तुझे सिंहासन पर बैठाया है, अतः मैं चाहता हूं कि तू पुरुषार्थ दिखा। मैं जानता हूं कि तू ऐसा नहीं है, परंतु या बांध कोमल वस्त्रों में बढ़े हुए इस युवक को दाऊद का यह आदेश था। सुलेमान तो दाऊद की नाई था और न ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की नाई था। वह हमारे प्रभु यीशु की नाई भी नहीं था, परंतु अब वह इसराइल का एक राजा है, वह अभिषिक्त जन है। मेरे मित्रों, हम इसके जीवन से बहुत सारी बातों को देखते हैं जो दाऊद उसे इस समय सिखा रहा है। क्योंकि उसे इसराइल पर राज्य करना है और उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो उसे निभाना है। मेरे प्रियो, आज प्रभु मेरे और आपके जीवन में भी इन्हीं बातों को देखना चाहता है। वह मुझे और आपको भी सिखाता है ताकि हम अपने जीवन के उन जिम्मेदारियों को समझ सकें और सही निर्णय लेकर आगे बढ़ सकें। मेरे मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मुझे विश्वास है कि आप इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही लाभ प्राप्त कर रहे हैं और इस बात को आप जान पाए हैं कि दाऊद इस मरणासन के समय में एक सही निर्णय लेता है और एक सही राजा का नियुक्ति करता है। मेरे मित्रों, आज हम भी अपने जीवन में सही निर्णय लें और परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े हों। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
फूलों से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया, फूलों से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया। भटके कदम को तेरे वचन ने राह पर लाया, फूलों से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया। तेरे बिना था जीवन दुखियारा, पाया तुझे तो पाया जग सारा। तेरे बिना था जीवन दुखियारा, पाया पाया तुझे तो पाया जग सारा।